हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी हैं। अभी हम उनसे सुन भी रहे थे, बहुत सुंदर कमेंट्री करा रहे थे। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का लौकिक जन्म कोटा राजस्थान में हुआ। 1974 में आप संस्था के संपर्क में आई और 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री करने के पश्चात आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। 1991 में जब ग्लोबल हॉस्पिटल बना तो वहां पर आपने 91 से लेकर 2000 तक चिकित्सक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और आपका ये परम सौभाग्य रहा 2001 से 2007 तक बड़े दादी प्रकाशमणि जी की आप पर्सनल फिजिशियन रही और आप हमारे वुमेन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और स्वास्थ्य जागृति के लिए अनेक कॉन्फ्रेंसेस मेले आप करती रहती हैं और आज विशेष निरंतर योगी जीवन कैसे बनाएं इस पर अभी हम सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी को।
ओम शांति। हम बाबा के बच्चे सहज राजयोगी हैं और जब हम सहज योगी कहते हैं तो हम जानते हैं कि बाबा ने याद के लिए हमें कोई कठिन विधियां नहीं बताई कि हमें कोई कठिन मंत्र जपने हैं या कोई कठिन आसन करने हैं, लेकिन ये सहज जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को याद करता है ऐसे ही परमात्मा की स्नेहपूर्ण याद है। लेकिन जो याद हम करते हैं बाबा को वो याद सहज होने के साथ साथ निरंतर भी हो। बाबा हमें कई बार मुरलियों में कहते हैं कि 8 घंटा कम से कम बच्चों की याद होनी चाहिए। अगर 8 घंटा भी सारे दिन में हमारी याद है तो बाबा उसको निरंतर याद कहता है। 8 घंटा बाबा ने सोने की छुट्टी दी है और 8 घंटा हम शरीर निर्वाहार्थ जो अपना कर्म करते हैं, तो यदि हम अपना चार्ट देखते हैं याद का तो हम समझ सकते हैं कि सारे दिन में 8 घंटा भी हमारी याद नहीं हो पाती है। हमारी दिनचर्या शुरू होती है अमृत वेले से। वैसे तो भक्ति में हम भगवान को कहते थे, ढूंढते थे या कहेंगे पुकारते थे कि भगवान जब आप मिलेंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, श्वासों श्वास आपका स्मरण करेंगे, जो अनन्य भक्त करते भी रहे। यहाँ तक कि भगवान नहीं मिला लेकिन जो अनन्य भक्त हुए उनका लक्ष्य ये रहा कि हमारा एक श्वास भी भगवान की याद के बिना न जाए। तो जब भगवान ने स्वयं अब हमें ढूंढा है, हम पहले ढूंढ रहे थे बाबा नहीं मिला लेकिन अब घर बैठे बाबा ने हमें ढूंढ लिया, तो बाबा के प्रति जो बहुत समय के बाद हमें कोई मिलता है तो उसके प्रति कितना स्नेह होता है हमारा। और जैसे कि कुछ समय के लिए उसके साथ बिल्कुल खो जाते हैं बातें करने में, समय का भान ही नहीं रहता है, तो बाबा भी हमें कितने लंबे समय के बाद, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल हम कहते हैं, तो वो दिल का स्नेह बाबा के प्रति हमारा कितना होना चाहिए और उस स्नेह के आधार पर याद बिल्कुल सहज और निरंतर हो सकती है। लेकिन कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे दिमाग से याद करते हैं, दिल के स्नेह से याद नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान मिला है, याद का महत्व क्या है, तो उस आधार पर दिमाग से योग लगाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। तो योग कभी लगता है और कभी टूट जाता है, लेकिन अगर वो संबंध की अनुभूति बाबा के साथ है तो फिर याद करना मुश्किल नहीं है। पर जब हम निरंतर स्मृति की बात करते हैं तो अमृत वेला हमारा प्रारंभ है, और अमृत वेले जो हम स्थिति बनाते हैं याद की, वो सारा दिन हमें मदद करती है। तो सुबह आंख खुलते ही हमारा संकल्प होना चाहिए, मैं परम धाम से अवतरित श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ, जिसे बाबा ने धर्म स्थापन करने के लिए इस सृष्टि पर भेजा है। और उसके बाद जब हम बाबा की यादों में बैठते हैं तो बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति को सीट पर सेट रखो, अपने को बीज रूप स्थिति की सीट पर सेट करो, क्योंकि अमृत वेले बीज रूप स्थिति का अनुभव करना बहुत सहज होता है। सारे दिन में शायद हम इतना सहज बीज रूप स्थिति नहीं बना सकते, यानी मैं बिंदु आत्मा बाबा बिंदु रूप सिंधु में समाई हुई हूँ, या उस लगन में मगन स्थिति का अनुभव करना, लवलीन स्थिति का अनुभव करना बहुत सहज होता है। हमको प्रकृति का भी सहयोग होता है उस समय, और आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस भी बिल्कुल दबे हुए होते हैं, तो जिसको बाबा कई बार कहते हैं लाइन क्लियर होती है। तो यदि हम बिल्कुल जागृत अवस्था में बैठे हैं, अपनी अमृत वेले शक्तिशाली योग की स्थिति में बैठे हैं, तो हम बीज रूप संपन्न संपूर्ण स्थिति का अनुभव बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं। और ये निराकारी स्थिति का अनुभव सारा दिन हमें सहज निराकारी स्थिति का अनुभव कराएगा। दूसरा, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव भी हम अमृत वेले करें, और सारे विश्व को बाबा से जो हम वरदान ले रहे हैं, बाबा से जो हम शक्तियां ले रहे हैं, बाबा से जो हम गुणों का अनुभव कर रहे हैं, शांति के, शक्ति के वाइब्रेशंस, वो हम सारे विश्व की आत्माओं को भी दें। तो बाबा कहते हैं सहयोग देना भी योग है। अगर हम विश्व की आत्माओं को सहयोग दे रहे हैं तो वो दुआएं हमें शक्तिशाली योग की स्थिति में मदद करती हैं। और अमृत वेले बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व संबंधों का सार रूप में अनुभव भी हम करें कि बाबा ही मेरा संसार है, ये अनुभव मुझे हो रहा है। पर अमृत वेले नंबरवार होते हैं, बाबा ने तो हमें हमेशा बताया है हर पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं, तो कुछ तो सचमुच ऐसी पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ फिर झुटका योग भी करते हैं और निद्रा योग भी करते हैं। तो अगर हमने वो योग किया तो फिर निरंतर में अंतर आएगा, जो सारे दिन हमें मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि बाबा के वरदान हमने सही तरीके से नहीं लिए, तो वो सहज योग में फर्क आने लगेगा। ये हमें माया जीत बनने में भी मदद करता है सारा दिन में। तो अगर माया की प्रवेशता होती है तो माया व्यर्थ संकल्पों में ले जाती है, नेगेटिव संकल्पों में ले जाती है। बाबा से योग व्यर्थ संकल्पों के कारण सहज टूट सकता है। तो वो हम अपने आप को चेक करें कि हम अपने योग की स्थिति को पावरफुल कैसे बनाएं, मेरा अमृत वेला पावरफुल हो। फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि या तो हम नियम निभा लेते हैं या नहीं तो कई बार कोई ना कोई कारण का बहाना करके अमृत वेला छोड़ भी देते हैं। आज बहुत थके हुए थे, रात को देर से सोए, या आज तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में दर्द था, आज सो जाते हैं, तो वो हमने अपना हीरे तुलिए समय ही गंवा दिया। तो याद का वो जो जमा होना चाहिए हमारा, वो जमा होता ही नहीं है। फिर जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा ज्ञान को योग में तो शामिल नहीं करते हैं, मुरली सुनना योग नहीं है, लेकिन अगर मैं इस स्मृति से सुनती हूँ कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं, कौन मेरा शिक्षक है, अगर इस स्मृति से हम मुरली सुन रहे हैं और साथ साथ में बाबा हमें जो मुरली में अनुभव करा रहे हैं, अगर वो हमें परम धाम की स्मृति दिला रहे हैं या बाबा हमें अपना ही परिचय दे रहे हैं, वैसे वैसे यदि हम अपनी बुद्धि को अनुभव में ले जाते हैं तो वो भी योग की स्थिति बन जाती है। तो उस ज्ञान में भी जैसे योग जमा हो जाता है। फिर जब हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो जब हम कर्म करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को ये स्मृति दिलाएं, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ या ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। फिर चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप अपना परिवार का कार्य कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में बिजनेस में जा रहे हैं, जो भी कारोबार आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को सारे दिन में प्रवृत्ति संभालनी ही होती है, चाहे वो फिर सेंटर की प्रवृत्ति ही क्यों ना हो। तो जैसे ही कर्म में आए तो खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है करने के लिए, भगवान का कार्य मैं आत्मा कर रही हूँ। अगर ये स्मृति मेरी है तो जैसे मानो कोई विशेष व्यक्ति मुझे कार्य करने के लिए देता है तो हम उसे कितना विशेष अटेंशन से करते हैं। हाँ, मानो प्रेसिडेंट किसी को कुछ कार्य करने को दे तो एक तो बहुत नशा होगा कि मुझे किसने काम दिया है, प्रेसिडेंट ने मुझे ये काम करने के लिए दिया है, और फिर क्योंकि वो इतना श्रेष्ठ है तो हम उस कार्य को भी उतनी ही क्वालिटी से करेंगे। तो स्वयं भगवान ने मुझे ये कार्य करने के लिए दिया है, अगर ये स्मृति मुझे है तो फिर हम उस कार्य को कितनी श्रेष्ठता से करेंगे, कितने अटेंशन से करेंगे। ब्राह्मण आत्माओं के कर्म कैसे होंगे, रॉयल होंगे, क्योंकि रॉयल श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो कर्म भी फिर वैसे ही होंगे। लेकिन स्मृति से, अगर स्मृति नहीं है, वही साधारण स्मृति में चले जाते हैं, ठीक है ना, नियम निभा लिया, अपना अमृत वेला कर लिया, मुरली कर लिया, अभी कितना क्या सारा दिन बाबा को याद करेंगे, सारा दिन याद कैसे रह सकती है, रह सकती नहीं रह सकती है। तो अगर ऐसे सोचते हैं और जैसे दुनिया में लोग कर्म करते हैं सांसारिक स्मृतियों में, इसकी उसकी याद में, ऐसे ही अगर हम भी उसी तरह से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म भी उनके जैसे ही लौकिक दिखाई देंगे, साधारण दिखाई देंगे, उसमें अलौकिकता नहीं भरेगी। कर्मों में अलौकिकता तभी आएगी, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, बाबा ने हमें जो भी पार्ट दिया है इस ड्रामा में, हमें जो भी पार्ट मिला है, उस पार्ट में रह करके ही मुझे अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाना है। और फिर कार्य के साथ साथ ये भी कि मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, कर्म करने में मैंपन नहीं आना चाहिए। तो जितना हम बाबा को सरेंडर करके कर्म करते हैं सारा दिन, उतना ही माया का दरवाजा बंद रहता है। अगर जरा भी मैंपन मेरापन आया तो फिर प्रभाव पड़ेगा, और जब वातावरण का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है तो बाबा की याद या तो बात है या बाप है। बाबा हमेशा ये कहते हैं कि या तो मेरे मन में वो बात रहेगी और नहीं तो बाबा याद रहेगा। तो फिर यहां अटेंशन देने की जरूरत है। अगर मुझे पूरी स्मृति है कि करण करावनहार बाबा है तो फिर मैं साक्षी स्थिति में कर्म करती हूँ, साक्षी स्थिति में आत्माओं के संपर्क में आती हूँ और बाबा मेरा साथी रहता है। कोई भी कर्म जब हम शुरू करते हैं बाबा की याद में शुरू करते हैं, मानो हमें बुद्धि लगानी भी पड़ती है और उस समय बुद्धि में ऐसा लगता है कि हमें बाबा याद नहीं है क्योंकि कर्म बुद्धि लगाने का है। मानो आप अकाउंट्स का काम करते हैं तो काफी बुद्धि हमारी उसमें यूज होती है। लेकिन अगर मैंने कर्म करने से पहले बाबा को याद कर लिया तो फिर भले मेरी बुद्धि कार्य में लगी हुई है लेकिन वो योग में आ जाता है। और यदि माताएं हैं जैसे घर में खाना बना रहे हैं, अब खाना बनाने में तो बहुत बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है, उस स्थिति में बाबा की याद में ही हम खाना पकाएं। अगर आपको वैसे याद करना मुश्किल लगता है तो आप गीत लगा लें या कोई क्लास लगा लें, कुछ भी बाबा की याद दिलाने वाला साधन भी प्रयोग करके यदि हम उस स्थूल कार्य को करते हैं, चाहे वो सफाई का काम कर रहे हैं, कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, कोई भी जिसमें बहुत बुद्धि हमें नहीं लगानी पड़ती है, तो ऐसे अटेंशन दे करके हम बाबा की याद को निरंतर बना सकते हैं। तो बुद्धि उस समय फिर पर चिंतन पर दर्शन में नहीं जाएगी लेकिन स्व चिंतन और बाबा की याद में रहेगी। तो शुरू शुरू में हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बाद में जैसे अभ्यास हो जाता है, तो बाबा कहता है जैसे 63 जन्मों के संस्कार, रावण के संस्कार नेचुरल हो गए ना, देहाभिमान के संस्कार नेचुरल हो गए, ऐसे ही याद के संस्कार भी नेचुरल हो जाएंगे। और फिर ऐसे लगेगा कि याद करें कैसे नहीं लेकिन याद भूलें कैसे। एक बार दादी प्रकाश मणि जी उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो ऐसे ही एक बार हम दादी जी के साथ बैठे थे तो हमने दादी जी से ये सवाल पूछा, क्योंकि दादी अमृत वेले तो योग करते थे लेकिन बाकी सारा दिन तो सेवा के कोई ना कोई कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे, ऐसे अलग से कभी हमने उन्हें योग में बैठे हुए नहीं देखा। तो ऐसे हमने पूछा कि दादी आप बाबा को कब याद करते हैं, तो दादी ने कहा कि बाबा मुझे भूला कब है जो मुझे बाबा को याद करना है। तो ऐसी स्थिति हमारी हो कि हम ये महसूस करें बाबा से हमारा इतना प्यार है, इतनी लगन है या इतना साथ है कि बाबा हमें भूलता ही नहीं है। दुनिया में भी किसी को किसी से बहुत प्यार होता है ना, बहुत लगाव होता है, तो वो भुलाए नहीं भूल पाते हैं उनको। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर अलग हो जाते हैं तो उनको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह वो है देहधारी की याद, उसमें भी वो स्थिति हो जाती है। तो यहाँ तो शिव बाबा जो हमें इतनी बड़ी प्राप्ति कराने वाला है, हम क्या कहते हैं, पाना था सो पा लिया, परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की वो मिला, माना सब कुछ मिल गया, सब व्यक्ति सब वैभव उसमें समाये हुए हैं, संसार की सब प्राप्तियां बाबा में समाई हुई हैं। लेकिन दिल से वो अनुभव हो, जब दिल से वो अनुभव होगा तब बाबा कहता है कि लीकेज नहीं होगी। अगर दिल से बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है तो जिस संबंध का अनुभव नहीं है वो संबंध आपको सारे दिन में कहीं ना कहीं बुद्धि को खींच लेगा। और जहां भी आपका लगाव जाता है या जहां भी आपका थोड़ा ज्यादा झुकाव है, लगाव झुकाव की स्थिति होती है, एक्स्ट्रा स्नेह है मेरा या मोह है, जिस भी रूप में वो आत्मा मुझे आकर्षित करती है, चाहे गुणों के रूप में, चाहे सहयोग के रूप में, चाहे अच्छा लगने के रूप में, चाहे साथ के रूप में, कई बार विपरीत होता है, स्नेह का लगाव नहीं होता है लेकिन हिसाब किताब है, हिसाब किताब है माना कुछ संस्कारों का टकराव, उनसे हमारे विचार मेल नहीं खाते या उनके कुछ अवगुण मुझे पसंद नहीं है, उनकी कुछ गलतियां मुझे परेशान करती हैं, तो दोनों तरह की आत्माएं मेरी बुद्धि को खींच लेती हैं और इस प्रकार की आत्माओं से सारा दिन में हमारा संपर्क होता ही है, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट किया है कि हिसाब किताब हमें यहाँ ही चुकतू करने हैं। तो यदि मेरी स्थिति शक्तिशाली है, बाबा मेरे साथ हैं, तो भले ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी लेकिन हम साक्षी स्थिति में उस आत्मा के पार्ट को देखते हुए उन्हें भी उस परिस्थिति को पार करने में सहयोग देंगे, उसमें बुद्धि फंस नहीं जाएगी, वो हमारा योग तोड़ने के निमित्त नहीं बनेगी। लेकिन यदि मेरी स्थिति कमजोर है और बाबा के साथ मेरा योग नहीं है, तो फिर बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ते ही आप भले योग लगाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, आप बैठेंगे योग में लेकिन सामने कौन आएगा, वो आत्मा, और वो आपको उड़ती कला में कभी भी जाने नहीं देगी। वो जो कर्म बंधन का बोझ बनेगा वो आत्मा को ऊपर से नीचे ले आएगा। आप जाने की कोशिश करेंगे परम धाम में, जाने की कोशिश करेंगे अव्यक्त वतन में बाबा के पास, लेकिन बुद्धि वहां स्थिर हो नहीं सकेगी, उस एकाग्रता की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे दिन में निरंतर बाबा की स्मृति में विघ्न रूप बनते हैं। तो उसके लिए बाबा हमें कहता है कि जो अलग अलग संबंध हैं, जैसे पिता का संबंध है, माता का संबंध है, दोस्त का संबंध है, साथी का संबंध है, बच्चे का संबंध है, जैसा समय वैसे संबंध का अनुभव करो। पिता के रूप में हमेशा पिता बच्चे का संरक्षक होता है, वर्षा तो देता ही है, बाबा से हमें सर्व खजानों का वर्षा मिला है, भविष्य का भी वर्षा मिलेगा, लेकिन जैसे मानो एक बच्चा अपने पिता के साथ कहीं घूमने जाता है, कहीं तालाब किनारे, और वो बच्चा देखता है कि बहुत बच्चे जो हैं वो तालाब में नहा रहे हैं, उसको भी इच्छा होती है मैं तालाब में नहाऊं, लेकिन पिता को मालूम है कि इसको तैरना नहीं आता है, तो वो बच्चे का हाथ पकड़ के रखेगा, उसको पता है कि अगर ये तैरने जाएगा तो डूबने का चांस है, तो वो उसको रोक के रखेगा नहीं। तो ये उसको जो सुरक्षा देनी है, जो उसका कर्तव्य है, वो पिता पालन कर रहा है। तो शिव बाबा भी हमारा पिता है और वो अगर मेरे साथ है तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आने वाली होगी, बाबा मुझे सावधान करेगा या मेरे को वो राइट टचिंग राइट टाइम पर आ जाएगी कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, यहाँ मुझे जाना है नहीं जाना है, या माया किसी भी रूप में आएगी तो वो माया जीत बनने की शक्ति मुझे मिल जाएगी, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मुझे मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य में बाबा मेरा साथी है, और अगर कोई हमारा साथी सहयोगी होता है तो वो कार्य करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं एक और एक 11 होते हैं, तो अगर भगवान ही हमारे साथ हमें मदद कर रहा है तो वो कार्य हमारा कितना सहज होगा। बाबा कई बार कहते हैं कि योग में यदि आप काम करते हैं तो 3 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर लेंगे। इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है हमारी, इतनी क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं योगेशु कर्म कौशलम, क्योंकि बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाती है। जब व्यर्थ और नेगेटिव होता है तो वो लीकेज है, और लीकेज होती है, हम कमजोर होते हैं, तो वही जो साधारण सा कार्य है उसको करने में हम घंटों लगाते हैं। लेकिन जब बुद्धि शक्तिशाली है तो वही कठिन से कठिन कार्य भी कम समय में हम संपन्न कर लेते हैं। तो हम यूज करें, बाबा ने हमें ऑफर किया है, भगवान ने स्वयं हमें संबंधों की ऑफर दी है ना, कि सर्व संबंधों से मैं आपके साथ हूँ। लेकिन यदि हम उसे यूज करते हैं तो फिर हमें उसका परिणाम दिखाई देता है, और साथ साथ डबल कमाई हमारी जमा होती है। बाबा की याद है तो याद में कमाई है, वर्तमान में तो हमें प्रत्यक्ष फल मिल ही रहा है, उस कर्म की जो खुशी है, उस कर्म की जो शक्ति है वो हमें महसूस होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भविष्य कमाई भी जमा होती है। और ऐसे ही जब हम भोजन खाते हैं, कर्म करते हैं लेकिन हम भोजन खाते हैं, तो बाबा कहते हैं कभी भी बाबा की याद की दृष्टि दिए बिना भोजन स्वीकार नहीं करना है। वैसे भी माताएं भी भोजन बनाती हैं, तो बाबा को भोग लगाना है, चाहे घर में भी बनाते हैं लेकिन भोग लगा करके ही भोजन कराना है। ऐसे नहीं कि भूख लगी है तो भोग नहीं लगाया, जल्दी जल्दी में जैसे आया वैसे खा लिया, वो ब्रह्मा भोजन नहीं है। बाबा की याद में बनाया हुआ और बाबा को भोग लगा करके जो हम भोजन खाते हैं वो ब्रह्मा भोजन है, जो हमारे तन और मन दोनों को शक्ति देता है, जो हमें निरोगी बनाता है। बाबा कहता है कि ब्रह्मा भोजन में इतनी ताकत है कि वो आपको निरोगी भी बना सकता है। फिर रात को हम सोते हैं, सोने के पहले बाबा की याद की गोदी में सोना है, ये बाबा की श्रीमत है। और उससे भी पहले हमें बाबा को अपने सारे दिन का चार्ट देना है, मानो सारे दिन में श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हुआ मेरे से, कोई भूल हुई हो सकती है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हमारे भी अपने पुराने संस्कार हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कर्म हमसे हो जाता है। तो फिर बाबा को यदि मैंने सुना दिया और अपने उस भूल की माफी ले ली, तो बाबा कहता है आधा तो वहीं समाप्त हो गया, और आगे के लिए एक तो मेरे अटेंशन पर वो बात आ गई कि मेरे से ये गलती हुई, मुझे ध्यान रखना है, अगले दिन भी मेरे से वो भूल ना हो जाए, उस पर मेरा ध्यान जाता है और बाबा से भी मुझे शक्ति मिल जाती है, तो वो संस्कार को दूर करने में मुझे मदद मिलती है। कई संस्कार हमारे इतने कड़े होते हैं कि हम बार बार रियलाइज करते हैं फिर बार बार वही गलती करते हैं, ना चाहते हुए भी वो कर्म हमसे बार बार हो जाते हैं। तो उसका चार्ट रखना जरूरी है, जितना हम उसका चार्ट रखेंगे उतना हमें बाबा की मदद मिलेगी और बहुत सहज हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और फिर सोते समय यदि हम बाबा की याद में, परम धाम में, बाबा की स्मृति में सोते हैं, तो कई बार ये देखा जाता है कि बहुत लोगों को सारे दिन के कार्यों का जो बोझ होता है ना, चिंता के रूप में, उस समय ही स्मृति में आता है जब वो सोने जाते हैं। उसके पहले तो मन कहीं ना कहीं व्यस्त होता है तो उसे सोचने का टाइम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं तो सारे दिन की बातें शुरू होती हैं मन में, तो समय पर नींद नहीं आती है। एक तो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, और या फिर नींद आती भी है तो बहुत सपनों वाली नींद होती है, और कई बार ऐसे स्वप्न भी आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो बाबा कहता है अगर बाबा की याद में सोएंगे तो दोनों ही बातों से मुक्ति मिल जाएगी, एक तो सहज दिलाराम, दिल को आराम दे देगा, और नींद आ जाएगी और स्वप्न से मुक्त, ऐसे जो स्वप्न है जो डिस्टर्ब करते हैं मन को वो स्वप्न भी नहीं आएंगे। और अगर हम बाबा की याद में सोते हैं तो ये योग निद्रा में आता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मम्मा बाबा की सबसे ज्यादा कमाई नींद के योग की कमाई थी, लास्ट में हमने अपने मन को किस स्थिति में रखा, हम कैसे सोए, वो भी हमारे मार्क्स जमा होते हैं। हमारी सत्व प्रधान नींद है या हमारी तमो प्रधान नींद है, तो ये भी चेकिंग चाहिए। सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक की जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में बिल्कुल बाबा के श्रीमद प्रमाण यदि हमारा मन चलता है तो पूरा दिन हम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। निरंतर स्मृति स्वरूप बनना हमारे लिए सहज हो जाता है और हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बाबा की यादों में आनंद मौज के झूले में झूल रहे हैं। भले ही इस कलियुग की दुनिया के वातावरण में रहते हैं लेकिन फिर भी हमारी जीवन खुशियों की मौजों की जीवन हमें अनुभव होती है, अमूल्य जीवन अनुभव होती है, श्रेष्ठ जीवन अनुभव होती है, हीरे तुल्य जीवन अनुभव होती है। और न सिर्फ हम स्वयं के प्रति लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आने वाले हैं, फिर चाहे वो हमारे घर परिवार के हैं, चाहे वो हमारे कार्य के साथी हैं, सब भी हमसे वैसा ही अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं कि ये आत्माएं न्यारी हैं, ये हमारे जैसे साधारण आत्माएं नहीं हैं। तो ये अनुभव करना बाबा कहता है ये संगम युग की प्रॉपर्टी भी है और पर्सनालिटी भी है। और अगर ये अभी किया तो है और अभी नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो हम हमेशा इस बात का लक्ष्य रखें, अगर कुछ कमी है हमारे इसमें चार्ट में, कमी है, इतना योग हमारा पावरफुल नहीं है या योग में कमी है व्यर्थ संकल्पों के कारण या परिस्थितियों के प्रभाव से कुछ नेगेटिव संकल्पों के कारण, तो हम इस रीति से उसको दूर कर सकते हैं और अपने योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हुए निरंतर योग कर सकते हैं। ओम शांति।